हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवन, दामोदर जयंत देश भक्तवन, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के सत्संग के अंतर्गत चौथे अध्याय के चौथे स्कंद के नवे अध्याय में ध्रुव महाराज की भगवान को साक्षात सामने प्रकट गरुड़ आरूढ़ भगवान को प्रार्थना है, उनका वर्णन और उनके आज पूर्णाहुति की ओर आगे चल रहे हैं। आज नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जी का आविर्भाव तिथि भी है, जिनके भजन सारे शास्त्रों का सार है। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तो अपने साथ हमेशा नरोत्तम दास ठाकुर का पुस्तक रखते थे, प्रेम भक्ति चंद्रिका। और कोई कहता था कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा, बोला चार आने में मिल जाएगा, पांच आने का जाओ, दो पुस्तक लाओ, प्रार्थना और भक्ति, प्रेम भक्ति चंद्रिका, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। सो इतना अद्भुत महाशय जी नरोत्तम दास ठाकुर, जिसके लिए कृष्ण प्रेम श्री चेतना महाप्रभु ने पद्मा नदी में रखा था और यहाँ ब्रज में बहुत समय निवास किया। जीव गोस्वामी के तत्वधान में उन्होंने गोस्वामी के शास्त्रों का अध्ययन किया और पहली संकीर्तन पार्टी पुस्तकों को लेके यहाँ से बंगाल की तरफ जा रही थी। तो ये एक विशेष संकीर्तन आंदोलन का सेनापति नरोत्तम दास ठाकुर हमारे संप्रदाय के छह गोस्वामी के उपरांत तीन प्रभु में प्रमुख है, नरोत्तम दास और श्यामानंद और श्रीनिवास। ये तीन प्रभु, महाप्रभु, छह गोस्वामी, फिर तीन प्रभु, और इसके बाद श्रृंखला चालू होती है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण, और इसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती और हमारे श्रील प्रभुपाद। तो ये चेतना महाप्रभु के बाद तीन चार विशेष भक्ति के उत्थान के आचार्य हैं। आज हम 16वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं, जिसमें ध्रुव महाराज तीन श्लोकों में भगवान के स्वरूप का वर्णन करके, अब जो ज्ञानी भगवान को भक्ति के साथ ज्ञान युक्त ब्रह्म के रूप में देखते हैं, उनकी अनुभूति का वर्णन कर रहे हैं। यस्मिन् वृद्धगतयो हि अनेशं पतन्ति विद्याद्यो विविध शक्त्यै अनुपूरव्यात्। विद्याद्यो विविध शक्ति अनुपूरव्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवम् एकम अनंतम माध्यम आनंद मात्रम अविकारम अहम प्रपद्ये। मैं शरण लेता हूँ, प्रपद्ये परपना मतलब शरण लेना, मैं शरणागत हूँ किसके, आनंद मात्रम, जो आनंद मात्र है, कौन है आनंद मात्र, ब्रह्म, तद ब्रह्म, उस ब्रह्म को जो आनंद मात्र है, जो विकार रहित है, जो विश्व भवम, जिसके द्वारा इस विश्व की सृष्टि होती है, वो एक है, वो अनंत है, वो आदि है, उसका मैं शरण लेता हूं। उसमें क्या है, यस्मिन् विरुद्ध गतयो, उसमें विरुद्ध सब बातें दिखती हैं, अनिशम पतति, और पूर्ण रूप से वो जो है निरंतर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, नेट प्रॉब्लम जियो बहुत कम है आज, यहाँ लोड इसके ऊपर ज्यादा लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हो गया, आज यहाँ कुंभ मेले का स्नान था तो पूरा वृंदावन भरा हुआ है रोडों पे। आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है प्रभु? ओके। ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, कैसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? ब्रह्म के रूप को। तो इस श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गति वाली अनेक शक्तियां निरंतर धारावाहिक रूप से प्रकट होती रहती हैं। तो ये है पहली दो लाइन का अर्थ। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, आपसे ही विद्या अविद्या।
प्रभु जी फिर कट रही
आवाज तो अभी है, अभी तो अभी यार नहीं आ रही है, तो नेट का प्रॉब्लम है, ये बहुत रश है। आ रहा है कि नहीं? आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गति वाली अनेक शक्तियां निरंतर धारावाहिक रूप से प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं आपकी शरण लेता हूं। ब्रह्म रूप से ज्ञात उन्हीं भगवान को नमस्कार ध्रुव जी इस श्लोक के द्वारा कहते हैं। आपसे ही वृद्ध मति वाली विद्या अविद्या आदि अनेक शक्तियां अकस्मात उत्पन्न होती रहती हैं। आप ही संपूर्ण जगत के कारण हैं, अखंड हैं तथा अनादि हैं। तो ये ब्रह्म स्वरूप को वर्णन किया जा रहा है। तो आइए श्री प्रभुपाद जी के भाव और चक्रवर्ती पाद के भाव को देखते हैं। हे भगवान, प्रभुपाद जी लिखते हैं, आपका जो ये निराकार ब्रह्म स्वरूप है उसमें हमेशा विरुद्ध प्रकार की शक्तियों का आभास होता रहता है, विद्या और अविद्या दोनों का। आपकी शक्तियां अनेक है, अनंत है और निरंतर धारावाहिक रूप से प्रकट होती रहती हैं। और आप अखंड हैं, अनादि हैं, निर्विकारी हैं और आनंद स्वरूप है और इस जगत भौतिक जगत के कारण है। आप जो सामने हमारे खड़े हैं ना, विष्णु भगवान कृष्ण गर्भा, आपका ही ये एक ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। चक्रवर्ती पाद ने प्रपद्य का भाव लिखा है, शरण लेता हूं मैं किसका? अनंत का, आदि का, आनंद मात्र का, निर्विकारी का, आदि कारण का, जीवन के और संसार के आदि कारण का शरण लेता हूं, जिसके अंदर सदा ही निरंतर धारावाहिक रूप से विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रकट्य होता रहता है, विद्या अविद्या आदि। अब चक्रवर्ती पाद कहते हैं, अभी तक तीन श्लोकों में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, अब उनके निराकार ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं। कैसा है वो? वो है निर्विकारी। बोला किसका लक्ष्य है? बोला भक्ति मिश्रित भक्त ज्ञान मिश्र भक्ति मिश्रित ज्ञान वालों का लक्ष्य है, भक्ति मिश्रित ज्ञान वालों का लक्ष्य है। और जो भगवान से बहुत दूर शांत भाव में है, वो भगवान के गुणों का, भगवान के जो अनंत गुण है उनकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं, उनके अभी उनके लिए उनकी चेतना जागृत नहीं है। वैसे लगता है कि ब्रह्म में कोई शक्तियां नहीं है, परंतु निरंतर उनके अंदर धारावाहिक शक्तियों का और दो प्रकार की शक्तियों का, अनिशम का मतलब निरंतर और अनुपूरक का मतलब धारावाहिक, विद्या आदि प्रकट होती रहती हैं। अब चक्रवर्ती पाद देखते हैं, जितनी भक्ति, जितनी मात्रा में भक्ति उतनी मात्रा में अनुभूति, जितनी भक्ति गाढ़ उतना भगत के भगवान के निकट, जितनी भक्ति कम उतना भगवान से दूर, यह है सिद्धांत। तो जिनके पास बहुत थोड़ी सी भक्ति होती है, ज्ञान मिश्रित भक्त, अल्प भक्ति वाले, वो भगवान में विशेषताओं का अनुभव नहीं कर सकते हैं, सविशेष भगवान, साकार भगवान, सगुण भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। वो ब्रह्म जो भगवान का स्वरूप है उसकी अनुभूति कर सकते। और फिर क्या लिखा है, उनके लिए आप आत्मा के स्वरूप में हैं। बहुत से ज्ञानी कहते हैं हमारी भगवान हमारी आत्मा है, तो ये क्या है, ये है विद्या शक्ति भगवान की। और फिर थोड़ा सा कोई और आगे बढ़े तो उनके लिए पुरुष, आपके पुरुष अवतार की अनुभूति होती है, भक्ति बढ़ गई, पुरुष अवतार की अनुभूति है, उसका आत्रा, वो कौन सी शक्ति है, वो माया शक्ति है, क्योंकि वो माया शक्ति के द्वारा सृष्टि करते हैं। वो माया शक्ति के द्वारा क्या करते हैं, विश्व भवम आप विश्व को सृजन करते हैं। और फिर अगर और थोड़ी भक्ति बढ़ गई और पूर्णता की ओर भक्ति बढ़ी तो भगवान की अनंत शक्तियों की अनुभूति होती है, और केवल शक्तियों की नहीं, ऐश्वर्य के साथ माधुर्य की भी अनुभूति होती है। तब तो वो देखेगा भगवान अनंत गुणों के सागर है, वो कृपा के सागर है, वो अद्भुत है, वो सब कलाओं में निपुण है, वो परम सुंदर है, उनकी मधुर लीलाएं हैं और सब अनंत है। इस अनुभूति के लिए गाढ़ भक्ति, परिपूर्ण भक्ति चाहिए। अब एक उदाहरण दे रहे हैं, प्रभुपाद जी ने इसी उदाहरण को अपने तात्पर्य में दिया है। कोई व्यक्ति किसी शहर में दूर से आ रहा है तो दूर से उसको शहर में प्रकाश ही नजर आएगा, लाइट दिख रही है। थोड़ा और निकट आएगा तो कुछ घर नजर आएंगे, कुछ बड़ी बिल्डिंगें नजर आएंगी, और थोड़ा नजदीक आएगा तो उसको हर जो है घर, अलग अलग घर के अंदर और घर के बाहर सुंदर से बने हुए चित्र नजर आएंगे। और शहर में प्रवेश कर दिया तो सब जगह उद्यान देखेगा, बगीचे देखेगा, नए सरोवर देखेगा। तो दूर से तो लाइट देख रहा था, लेकिन नगर में आ गया तो सब कुछ दिखा। ऐसे जो ज्ञान के मार्ग में जाते हैं, थोड़ी भक्ति है, वो दूर से केवल भगवान का प्रकाश ही देखते हैं। जितनी भक्ति बढ़ती उतने निकटता को प्राप्त करते हैं। इसके ऊपर एक श्लोक भी दिया है, शिशुपाल वध जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ है, उसमें नारद जी कहते हैं, दूर से श्री कृष्ण को देखा तो प्रकाश लग रहा था, थोड़ा नजदीक आया तो लगा था कोई आकृति है, और नजदीक आया तो श्याम सुंदर दिखाई दिया। तो दूर से तो देखते हैं तो प्रकाश ही नजर आता है। तो ये शक्तियां क्या है, ये विरुद्ध शक्तियां हैं। ज्ञान है तो अज्ञान है, विद्या है तो अविद्या है। अविद्या से क्या होता है, भगवान का पता ही नहीं लगता है। विद्या से आत्मा की अनुभूति होती है, सृष्टि करते हैं फिर संहार करते हैं, ये दोनों ही शक्तियां हैं, सृष्टि शक्ति है और संहार शक्ति है, तो ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। और जन्म होता है, भगवान का प्रकट होता है, अप्रकट होता है। भगवान कहीं तो अनंत लीलाएं करते हैं और कहीं बिल्कुल शांत भाव में होते हैं, तो कहीं कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। भगवान आत्माराम होते हुए भी भक्तों से बहुत स्नेह करके और अर्जुन के रथ के सारथी बन जाते हैं। तो ये सारी भगवान की कैसे अचिंत्य शक्तियां काम करती हैं, ये इसकी अनुभूति है। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा संहिता में लिखा है कि ब्रह्म जो है वो भगवान का किसका, गोविंद के सच्चिदानंद विग्रह का अनंत प्रकाश है, और उसी प्रकाश के अंदर जैसे सूर्य आकाश में है सब जगह प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश में कहीं कोई बादल आ जाए, जहां बादल की छाया होती है उतना है, उतना ही भौतिक जगत के सारे ब्रह्मांड इसी ब्रह्म तेज के अंतर्गत इतने सारे लोक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। कहां है ये? ब्रह्म में है। ब्रह्म के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के ऊपर कहीं बादल आया, अगर मानो बादल इस वक्त वृंदावन में है तो ये बादल जरूरी नहीं है कि अहमदाबाद में हो। तो ऐसे ब्रह्म ज्योति सर्वत्र है, परंतु जहां उसके ऊपर महत्त्व का बादल आता है वह सृष्टि होती है। तो जितने ब्रह्मांड है सृष्टि के वो ब्रह्म ज्योति में है, परंतु इन सारे ब्रह्मांडों का आदि कारण ब्रह्म ज्योति नहीं है, इसके पीछे जो परम पुरुष भगवान है वो है। ब्रह्म तो उसका प्रथम देखने में आने वाला कारण है भौतिक सृष्टि का, परंतु अंततो कदवा आदि कारण भगवान है। ध्रुव महाराज इसलिए भगवान को शरणागत होकर आदर पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। वो इस ब्रह्म की अनुभूति कैसा है? ब्रह्म ये आनंद स्वरूप है, ये बहुत बड़ा ब्रह्म आनंद, बहुत अति उत्तम आनंद है। संसार का आनंद तो उसके सामने तुच्छ है। अब प्रभुपाद जी चक्रवर्ती पाद के इसी भाव को देते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ये ब्रह्म का अनुभूति उन लोगों के लिए है जो अभी तक भक्ति में उन्नत नहीं है, जो भगवान के स्वरूप की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। ऐसे भक्तों को ज्ञान मिश्र भक्त कहते हैं। अब आपको तीन भक्ति तीन प्रकार की है चक्रवर्ती पाद के भाव में, शुद्ध केवला अनन्य भक्ति एक, दूसरी है मिश्रित प्रधानी भूता भक्ति। प्रधानी भूता का मतलब है मुख्य तो है भक्ति, परंतु उसमें थोड़ी सी मिलावट है कर्म की, ज्ञान की या योग की, वो भी अच्छी है, वो भक्ति भी भगवान का सारूप्य सालोक्य वैकुंठ का प्राप्ति करा सकती। तीसरी भक्ति है जो बहुत नीचे स्तर की मिली हुई भक्ति है, मिलावट वाली, उसका नाम है ज्ञान मिश्रित भक्ति, इसको गौण कहते हैं। इसमें भक्ति बहुत थोड़ी सी, क्योंकि बिना भक्ति के तो ज्ञान का फल भी नहीं मिलेगा, परंतु मुख्य ज्ञान है तो इसको विशेष रूप से भक्ति का नीचे का स्तर है बहुत। तो ऐसे जो भक्त हैं जिनके भक्ति के अंदर ज्ञान अतिशय अधिक है, वो तो आत्मा का ज्यादा ज्यादा आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, परंतु ये अधूरा ज्ञान है। ध्रुव महाराज यहां भगवान को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं। अब चक्रवर्ती पाद का भाव को देते हैं कि ब्रह्म को ऐसे ही देखना है जैसे कोई, और पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं विद्या अविद्या आदि ये सारी विभिन्न शक्तियां इस ब्रह्म का जो है विस्तार है, और ईशोपनिषद में इन शक्तियों का वर्णन है। ईशोपनिषद कहती है अविद्या कौन सी है जिसमें कम बुद्धि के कारण परम सत्य का पता नहीं लगता है, ये अविद्या। और विद्या क्या है? विद्या है, और इन दोनों का वर्णन ईशोपनिषद में हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं तो अविद्या भगवान के विषय में अनजान अनजानपन है, और विद्या भगवान के विषय में जानने के लिए जिज्ञासा है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जितनी भक्ति उतनी भगवान की निकटतम, कम भक्ति दूरी ज्यादा, ज्यादा भक्ति निकटतम ज्यादा। सो इसी आधार के ऊपर वही उदाहरण दिया है कि वो दूर से नगर को देखेगा तो लाइट नगर आएगी, बाकी अंदर सब नजर आएगा। और प्रभुपाद जी कहते अगर भगवान पूरे परम पुरुष को समझ गए तो फिर षडगुण भगवान के छह गुणों का भी पता लग जाएगा, और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो भगवान की दिव्य लीलाओं में रस आने लगेगा, और उससे आगे बढ़ेगा तो फिर भगवान की सेवा में आनंद की अनुभूति करेगा। और इसी को चक्रवर्ती पाद ने इसी उदाहरण से कहा है, दूर से नजदीक आने के लिए भक्ति में गहराई चाहिए। जब नगर में प्रवेश करेगा तभी संतुष्ट होगा, इसका अर्थ है जब हम भगवान के गोलोक धाम में प्रवेश करेंगे और जब भगवान का सानिध्य, भक्तों का सानिध्य प्राप्त करेंगे, तभी हमारे जीवन की यात्रा परिपूर्णता को प्राप्त करेगी। अब ध्रुव महाराज की प्रार्थना का पूर्णाहुति का श्लोक है। सत्याशिषो हि भगवन् तव पाद पद्मम् आशीष तदा आशीष तथा अनुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते अप्येवम् आर्य भगवान् प्रतिपाति दीनान् वाश्रेव वस्तकम् अनुग्रहकातरो अस्मा। ध्रुव महाराज का कहा जाए कि पश्चाताप है, और भगवान के अनुग्रह की और भगवान की कृपा की महिमा है इस श्लोक में। सत्य आशीषो, आशीष का मतलब भगवान का आशीर्वाद। सच्चा आशीर्वाद कौन सा है? वास्तविक में सत्य आशीर्वाद कौन सा है? हे भगवान, तब पाद मूलम, आपके चरण कमलों का शरण ही सच्चा आशीर्वाद है। परंतु आशीष तथा अनुभजत पुरुषार्थ मूर्ते है, परंतु लोग, आप पुरुषार्थ की मूर्ति है। पुरुषार्थ का मतलब है धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह चार पुरुषार्थ, आप इसका मूर्तिमान स्वरूप है। परंतु आपका भजन करने के बाद भी कोई कहे कि मैं कामना चाहिए या मुक्ति चाहिए, यह मुख्य नहीं है। मुख्य तो आशीर्वाद है आपके चरण कमलों की प्राप्ति। परंतु मेरा हाल देखो, अपि एवं आर्य भगवान, हे आर्य भगवान, हे अरे भगवान, हाँ आर्य भगवान, प्रतिपाति, परंतु मैं पतित हूं, मैं दीन हूं, तुच्छ हूं, पितामह के महान राज्य मांगने के लिए आया था, तुच्छ संसार का भोग मांगने के लिए आया था, परंतु आप कैसे हैं? वाशरेव कहते हैं वत्सला गाय को, वो गाय जिसने अब नए नए जात बच्चे को जन्म दिया है उसको कहते हैं वाशेरा, वाश्रेव, वाश्रेव, ये है वत्सला गाय, और वत्स का मतलब उसका बच्चा। जैसे गाय बच्चे में आसक्त होती है, उसको अमृत पिलाती है और उसको अनुग्रह कात्रो, और अनुग्रह करके उसकी रक्षा करती है कि कोई छोटे से बालक बछड़े को कोई पशु हानि न पहुंचा दे। ऐसे आप हम जैसे दीन तुच्छ संसारी राजपाठ के भोग मांगने वाले के ऊपर भी कृपा करते हैं, ये असली आशीर्वाद नहीं है। असली आशीर्वाद तो आपकी प्रेमा भक्ति है, ये है इस श्लोक का भाव। इसमें ध्रुव महाराज का पश्चाताप है। ध्रुव महाराज, ये अध्याय के अंदर ध्रुव महाराज के आगे और भी अधिक भाव है, जिसमें वो कहे मेरे ख्याल छह श्लोकों में वो वर्णन कर रहे हैं कि मैंने गलती कर दी, मैं भगवान का दर्शन किया, मेरा मेरी इच्छा तो पूरी हो गई, मुझे राज तो ब्रह्मा से भी बड़ा मिल गया, जिसकी सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं और सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, उनके बीच में पूजित ध्रुव लोक मिला, परंतु मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्यों नहीं हो संतुष्ट, ये प्रश्न पूछते हैं विदुर जी आगे इस अध्याय में। तो इस श्लोक का भाव श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, हे भगवान, जो लोग आपको परम आनंद मूर्ति समझकर आपका भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि की प्राप्ति की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही सच्चा फल है। अब इसका अर्थ समझ में क्या आया, आप है आनंद मूर्ति, पुरुषार्थ के आनंद की मूर्ति। प्रभुपाद जी लिखेंगे पांचवा पुरुषार्थ ही चेतना महाप्रभु कहते हैं वास्तव में पुरुषार्थ है, और वो है प्रेम। चार पुरुषार्थ को तो भागवत में कैतव धर्म कहा गया है, कैतव का मतलब धोखे में डालने वाला, लुभाने वाला धर्म है। पांचवा पुरुषार्थ ही भागवत का मुख्य उद्देश्य है, और वो कौन सा है, प्रेम भक्ति। और वो प्रेम भक्ति भी कौन सी, तब नारद जी कहते हैं वो प्रेम भक्ति है जैसे गोपियों ने कृष्ण के साथ प्रेम किया, वो प्रेम भक्ति। तो ध्रुव महाराज कहते हैं आप आनंद मूर्ति का भजन करे तो फिर राजपाठ मांगे वो मूर्खता है, मुख्य रूप से उसका फल तो है आपके चरण कमल। हे भगवान, यद्यपि ऐसी स्थिति है, फिर भी जिस तरह गौ अपने तुरंत के जन्मे बछड़े की दूध पिलात को दूध पिलाती है, और उसकी व्रक, व्रक का मतलब ये जो कहा जाए क्या कहते हैं वुल्फ, कोई भेड़िया आदि आके उसको क्षति न पहुंचाए रक्षा भी करती है, उसी तरह आपने भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहने वाले आप मुझ जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करने के लिए आप उनकी संसार भय से रक्षा करते हैं। तो यहां ध्रुव महाराज जैसे बछड़ा और भगवान वत्सला गाय, भगवान ने दर्शन देके अपने अमृत मूर्ति का दर्शन कराया, ये हुआ गाय का दूध पिलाना, और ध्रुव महाराज की रक्षा की किससे, संसार के जन्म मृत्यु के भय से, कराएंगे 36,000 साल तक राज, फिर द्रुलोक में देंगे। और भाई एक बार ब्रह्मा जी घूमते हुए द्रुलोक में, चौसारी नारद ऋषि द्रुलोक में घूमते हुए चले गए कि अपने शिष्य को देखूं कैसे प्रश्न है, बोला आंखों से आंसू धाराएं बह रही थी द्रु महाराज के, उठ के प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कैसे बालक द्रु वत्स, बोला आप जैसा गुरु मिला, साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, फिर भी संसार के राज की कामना करके कितनी मैंने मूर्खता करी, हीरा मिला और मैं टूटे हुए कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, इसलिए मेरी आंखों से धारावाहिक आंसू बह रहे हैं कि मैं गलती की, मैं बच्चा था, मैं समझ नहीं पाया कि मुझे क्या मांगना चाहिए था। तो आज भी द्रु लोक में आंसू बहा रहे। श्रीधर स्वामी लिखते हैं सकाम भजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस बात को कहते हुए द्रु जी कहते हैं हे भगवान आप परमानंद मूर्ति है, ऐसे आपसे प्राप्त होने वाले राज आदि की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति के सत्य आशीर्वाद है। सच्चा आशीर्वाद तो आपके चरण कमल है, राज को क्या करें, अर्थात वही परमार्थ फल है। ये उन लोगों के लिए है जो आपके परमानंद स्वरूप आपको मानकर निष्काम रूप से आपका भजन करते। यद्यपि ऐसी ही बात है, फिर भी हे स्वामी कामना पूर्वक आपका भजन करने वाले हम लोग कामना कैसे भजन करते, कुछ मिल जाएगा, हम लोगों को भी आप संसार भय से रक्षा करते हैं, अर्थात मुक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि आप अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा व्याकुल रहते हैं। ये उसी तरह होता है जिस तरह शीघ्र जिसने बच्चा दिया है, ऐसी गौ अपने बछड़े को दूध भी पिलाती है और उसके वृक इत्यादि से रक्षा भी करती है। तो ये ध्रुव महाराज अपने बालकपन में कोई चीज ऐसी मांग ली जो भगवान कुछ और दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ये मांग कर कहते हैं मैंने गलती कर दी, परंतु आप फिर भी दयालु हैं, आपने हमारा रक्षण किया, दर्शन दिया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप है वरदाता परम पुरुष भगवान, इसलिए जो आपकी पूर्ण रूप से भक्ति में है उनकी कोई इच्छा नहीं है, केवल आपके चरण कमलों का शरण चाहता है। और वो उत्तम है किससे? ये संसार का राजपाठ मांगने की इच्छा करने से वो महान है। यही तो आशीर्वाद है कि आपके चरण कमल मिले। क्या संसार का कोई सुख मिले ये आपकी आशीर्वाद मांगना चाहिए? नहीं। मुझ जैसा अज्ञानी बालक, उसके ऊपर भी आपने करुणा कृपा की है। जैसे गाय नवजात बच्चे को दूध पिला के रक्षा करती है, ऐसे आपने मुझे अपना अमृतमय दर्शन करा के और भव सागर से भय से मुक्त कर दिया। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान कह रहे हैं ए छोटे बालक, ये ठीक है, सच है, आप मेरे स्वरूप को जानते हैं। अभी आपके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, मैं जानता हूं, क्योंकि मेरा दर्शन हो गया। यही तो भगवान की भक्ति में की विलक्षणता है। जाओ भौतिक इच्छा से, भगवान भौतिक इच्छा पूरी करने से पहले हृदय को ही शुद्ध कर देते हैं। उस इच्छा की कामना ही समाप्त हो जाती है, भोग का विचार ही समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं हे बालक ध्रुव, ये सत्य है, आप मेरा स्वरूप जान गए, और ये अभी अब आप निष्काम हो गए, कोई कामना नहीं है, परंतु मैं निश्चित रूप से, जैसे आपने पहले मुझसे पितामह से महान राज्य मांगने की इच्छा की थी, मैं वो आपको दूंगा, ले लो, तुम्हारे लिए ध्रुव लोक बनाया है। ध्रुव महाराज कहते हैं मैं मूर्ख था भगवान, मुझे तो आपका मधुर प्रेम भक्ति चाहिए। अब गुरुद्रुव ये कह रहा है आपके चरण कमल ही आशीर्वाद है, यही परम लक्ष्य है, यही परम लाभ है, यही परम जो है रिजल्ट है। राज आदि की आशीष कोई विशेष आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि छूट जाएगा, जो चीज छूट जाए उसको उसका उसकी वरदान क्यों मांगना जो समाप्त हो जाए। आप तो पुरुषार्थ मूर्ति है, जो आपकी बिना भौतिक इच्छा से भक्ति करते हैं, परंतु भगवान मुझ जैसा पतित दीन बड़ी इच्छाओं के साथ, कामनाओं के साथ, सकाम भाव से आपके पास आए, परंतु आपने कृपा करके आपके चरणों का दर्शन करा के आपकी मधुरता का अनुभव करा दिया, ये आपने बड़ी कृपा की। क्या इसका कारण है, ऐसे आपने क्यों किया? कारण यह है कि आप बड़े उतावले होते हो अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए, इतना भक्त आपको पाने का इच्छुक नहीं है जितना आप भगवान भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए तैयार हो। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं जब हम जप करते हैं हम इतने कृष्ण कॉन्शियस नहीं होते, परंतु कृष्ण कॉन्शियस होता कि मेरा नाम ले रहा है, जप करने वाले का कृष्ण को ज्यादा ध्यान होता है कि मेरा नाम ले रहा है, जप करने वाले को कृष्ण का ध्यान नहीं होता है, परंतु कृष्ण को जप करने वाले का ध्यान होता है। ये बात ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि भगवान आपने अपने अपने स्वभाव के अनुसार कि भक्त वत्सल है, आपने देखा ये छोटा बालक है बेचारा, अब ये शुद्ध भक्त तो है नहीं, मेरी मधुरता का इसको थोड़ा सा चचका, इसको थोड़ा स्वाद दे दें, और फिर वही कहा है कि आप वासरा है, गाय के समान है, और बछड़े से गाय जैसे प्रेम करती है ऐसे आप अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, आपने मेरे को भक्ति का मधुर रस चखा दिया है, आपके चरणों के अंदर जो आकर्षक भक्ति का प्रेम का रस है उसका आपने थोड़ा सा मेरे को स्वाद दे दिया है, और आपने भक्ति के द्वारा मेरे भौतिक सारे इच्छाओं को समाप्त कर दिया है, अब भक्ति के रास्ते में कोई बाधा नहीं होगी, आप रक्षक हो गए हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ध्रुव महाराज को अब अपने भक्ति में त्रुटि का पता लग गया, शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा था। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हैं कि उसमें तीन बातें होती हैं, दो तटस्थ लक्षण होते हैं, एक स्वरूप लक्षण होता है शुद्ध भक्ति का। स्वरूप लक्षण का अर्थ होता है कि उसके बिना का भक्ति कहीं नहीं जाएगी, वो नहीं है तो भक्ति भी नहीं है, और तटस्थ लक्षण बताते हैं कि ये सामान्य भक्ति है कि उत्तम भक्ति है। तो स्वरूप लक्षण है अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, यह है स्वरूप लक्षण भक्ति का, उत्तम भक्ति का स्वरूप लक्षण है अनुकूलेन, अनुकूल भाव से कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण की शरीर मन और वाणी से सेवा करना। इसको उत्तम भक्ति बनाने के लिए दो तटस्थ लक्षण है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई संसार के भोग की अभिलाषा न हो, और दूसरा कर्म और ज्ञान का उसके ऊपर पर्दा न हो, उससे मिलावट न हो, स्वर्ग आदि प्राप्ति के कर्म की, ब्रह्मलीन होने के ज्ञान की, ये भुक्ति और मुक्ति रूपी दो पिशाची दो राक्षसी से बची हुई भक्ति, और अन्य अभिलाषा अन्य अभिलाषिता रूप कर्मों में फंदे में फंसाने वाले डायन से बची हुई भक्ति ही उत्तम भक्ति होती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं उसी को उत्तम भक्ति कहते हैं, अहितुकी होती है भक्ति, उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है, परंतु यहां ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति करने आया था अपने पिता और पितामह से भी बड़ा राज प्राप्त करने के लिए, पिता स्वयंभू मनु और पिता उतानपाद, दादा स्वयंभू मनु, उससे भी बड़ा राज चाहिए, फिर भी ऐसे भक्तों को भगवान दर्शन नहीं देते, क्योंकि भौतिक भाव से आया था, शुद्ध भक्ति नहीं थी, फिर भी भगवान ने कितनी कृपा की कि ध्रुव महाराज के सामने दर्शन दिया, यह है भगवान की अहितुकी कृपा। इसलिए ध्रुव महाराज भगवान का कृतज्ञ है, अपनी त्रुटि को जानकर और भगवान की महिमा को जानकर ये श्लोक कह रहा है, दो भाव है इसमें, भगवान की दयालुता और अपनी मूर्खता, इन दोनों को दर्शा रहे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान इतने दयालु है, न केवल भक्त की इच्छा पूरी करते हैं, और इच्छा उसकी अज्ञान के कारण है, उस इच्छा को तो पूरी करते हैं, परंतु उसके साथ उसका रक्षण भी करते हैं। ये अंतर, देवता अपने भक्त की इच्छा पूरी करते हैं लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु की इच्छा पूरी की, वरदान मांगे वो दे दिए, लेकिन रक्षा नहीं कर पाए। शंकर जी ने बाणासुर की रक्षा का कहा था, लेकिन कृष्ण आए तो रक्षा नहीं कर सके। वरदान तो देते हैं, ब्रह्मा जी ने दिया, शंकर जी ने दिया, हिरण्यकश्यप को दिया, रावण को दिया, लेकिन रक्षा नहीं कर पाए। भगवान वरदान भी देते हैं, इच्छा भी पूरी करते हैं और रक्षा भी करते हैं, ये भगवान की विशेषता है। और इसी के साथ प्रभुपाद जी गाय का पुनः उदाहरण दे रहे हैं, और प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, भगवत गीता में भी भगवान ने ऐसे कहा है। अब भगवत गीता में भगवान ने कहा है वो कौन सा श्लोक लिख रहे हैं? ऐसे भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूं जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं और परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। या ध्रुव महाराज भगवान को पुरुषार्थ मूर्ति कह रहे हैं। पुरुषार्थ मूर्ति का मतलब जीवन का परम लक्ष्य आप है, परंतु सामान्य रूप से पुरुषार्थ के दो ही मुख्य उद्देश्य है, धर्म के ऊपर चलकर धन कमाना और भोग करना और मुक्ति प्राप्त करना। ये चार चीजें हैं पुरुषार्थ में। प्रभुपाद ने उनको कैसे लिखा है? पहला चाहिए, हाँ, धर्म का पालन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भौतिक भोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। प्रार्थना करेगा अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, कामना के लिए। और जब कामना से हताश हो जाएगा, इच्छाएं कब तक चलेगी, पूरी होंगी, तब वो मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा, संसार के से संकट से मुक्त होना चाहेगा। ये सारे ही पुरुषार्थ कहलाते हैं। ये चार चीजें हो गई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। परंतु ये परम लक्ष्य नहीं है। ये पुरुषार्थ मूर्ति भगवान को प्राप्त करने का परम लक्ष्य नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये परम, वास्तव में परम लक्ष्य नहीं है। परम लक्ष्य है पंचम पुरुषार्थ, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, सिखाया है, जिसमें भगवान से ये नहीं मांगने की आवश्यकता है कि धन दो, पद दो, प्रतिष्ठा दो, मान दो, सम्मान दो, न धनम न जनम न सुंदरम, ये नहीं चाहिए। सब क्या मांगे? भगवान की अहितों की भक्ति। और अब ध्रुव महाराज अपनी इच्छाओं को जानते थे कि भौतिक चीजों के लिए मैंने भक्ति की थी, मैं पथभ्रष्ट हो गया था भौतिक इच्छाओं के कारण, परंतु अब भगवान आपने कृपा की है, अब मुझे भक्ति दीजिए, ये भाव है। मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे प्रिय विदुर, ध्रुव महाराज किस भाव से प्रार्थना की? शुभ संकल्प से प्रार्थना की, कोई उसके अंदर कहा जाए कि कपट नहीं था, उनका हृदय निष्कपट था। संकल्प युक्त प्रार्थना की, जैसे पूरी की। भगवान जो भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, अपने सेवकों के ऊपर, उन्होंने उनका अनुमोदन किया और फिर भगवान बोलने लगे। अब भगवान क्या बोलते हैं ध्रुव महाराज को कहेंगे? भगवान ध्रुव महाराज को कहेंगे, आप आए थे मेरे से पास लेने के लिए, तो वो तो मैंने राज की व्यवस्था कर ली है, लेकिन आपको भक्ति भी मिलेगी। आप राजपाट करेंगे, और जब आप राज करेंगे, आप भाई, आपका भाई शिकार पे जाएगा, उत्तम मारा जाएगा, और आपकी सुरुचि जो मासी है वो उसको ढूंढती जाएगी, और वो वन की आग में जल मरेगी। और भगवान वहाँ कहते हैं, तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम ये नहीं चाहते हो, तुम्हारे हृदय में द्वेष नहीं है, परंतु तुम मेरे भक्त का अपमान किया है, इसलिए उसकी यही दुर्गति होगी। दुर्गति हो या गति हो, यही होगी। और फिर ध्रुव महाराज, जब तुम्हारा यह राज पूरा होगा, तुम्हारा पिताजी पहले तो राज छोड़ के जाएगा, फिर राज आपको मिलेगा, फिर आप राज छोड़ के मेरे ध्रुवलोक में आएंगे, और ध्रुवलोक में फिर आप जो ब्रह्मा जी के आयु तक रहेगा, प्रलय से भी जो नहीं नाश होगा, वहां आप निवास करेंगे। इन शब्दों के साथ कथा को यह विराम देते हैं। हरे कृष्णा, कल हमारा छुट्टी का दिन है और परसों क्या कथा शुरू करनी है उसका संदेश भेज दीजिएगा। हरि बोल। कोई प्रश्न जिज्ञासा है क्या? श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। ओके हरि बोल।
ध्रुव महाराज की भक्ति इतनी स्ट्रांग।